नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। पञ्चद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूशान्ते नामानि नृपवर्णये। शब्दार्थ पञ्च पांच, द्वारः द्वार, तु तब, पौरस्त्या पूर्व दिशा की ओर, दक्षिणा दक्षिणी, एका एक, तथा भी, उत्तरा उत्तर की ओर एक, पश्चिमे इसी प्रकार पश्चिमी दिशा में, द्वे दो, अमूशाम उनमें से, ते तुमसे, नामानी नाम, नृप हे राजा, वर्णये मैं वर्णन करूंगा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजन, नौ द्वारों में से पांच पूर्व की ओर, एक उत्तर तथा एक दक्षिण दिशा को और दो पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। तात्पर्य, सतह के सात द्वारों अर्थात दो आंखें, दो नथुने, दो कान तथा मुंह में से पांच सामने देखते हैं, जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते बताया गया है। क्योंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, अतः इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया है, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं के एक एक द्वार दोनों कानों के सूचक हैं और पश्चिमी दिशा के दो द्वार गुदा तथा जननेन्द्रिय सूचक हैं। इन समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में राजा पुरंजन के बारे में चर्चा हो रही है, जो नारद मुनि ये व्याख्यान बता रहे हैं। वास्तव में ये पुरंजन राजा जीवात्मा का प्रतीक है। हम सभी जीव जो हैं वो पुरंजन के रूप से नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार जीव इस संसार में अपनी इच्छाओं के कारण से भ्रमण कर रहा है। तो वो पुरंजन का संवाद है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं पुरंजन शब्द का क्या अर्थ है। तो पुरंजन का अर्थ है पुरम और जन, ये दो शब्द मिलके पुरंजन शब्द बना है। तो पुरम का अर्थ प्रभुपाद जी बताए हैं ये शरीर या रूप, और जन का अर्थ है जीवात्मा। तो आत्मा अलग अलग प्रकार के शरीरों में, अलग अलग प्रकार के रूपों में बद्ध हो चुकी है, बंध गई है, इसीलिए इसे पुरंजन कहा गया है। जो पुर यानी नगर, नगर को भी पुर बोलते हैं। तो नगर में जो रहता है, नगर में कुछ जन रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, उसी प्रकार से ये जो शरीर रूपी नगर है इसमें भी एक जीव रह रही है, वो है जीवात्मा। तो उसे पुरंजन के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये बताया गया है कि पुरंजन एक राजा है। इसका अभिप्राय ये है कि सभी जीवात्माएं इस संसार में सुख भोग करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजा है तो राजा की क्या इच्छा रहेगी, राजा अच्छे से अच्छा सुख भोग करना चाहेगा, अच्छे से अच्छी सुविधा प्राप्त करना चाहेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा इस संसार में अच्छे से अच्छा सुख भोग करना चाहती है। हमें अच्छे से अच्छा विषय भोग प्राप्त हो, यही प्रयास सभी जीव कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक जिसे बोला गया है, मान लीजिए कोई घर है तो उस घर का कोई मालिक है। तो इंग्लिश में ये शब्द प्रयोग किया गया है प्रोप्राइटर, प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का अर्थ है मालिक। और दूसरा शब्द है ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर मतलब जो उस घर का मालिक नहीं है लेकिन किराए पे रह रहा है, कुछ समय के लिए उसने वो घर प्राप्त कर लिया है। तो हम सभी वास्तव में इस शरीर में रह रहे हैं जीवात्मा के रूप में। जीवात्मा इस शरीर में रह रही है, अलग अलग प्रकार के शरीरों में रह रही हैं, लेकिन वास्तव में जीवात्मा शरीर की प्रोप्राइटर नहीं है, मालिक नहीं है हम लोग इस शरीर के। अगर मालिक होगा तो मालिक का शरीर पे, उस वस्तु पे अधिकार होगा, उस घर पे अधिकार होगा, लेकिन हमारा इस घर पे, इस शरीर पे वास्तविक अधिकार नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हमें ये शरीर त्याग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस शरीर को धारण किए हैं, ऑक्यूपायर हैं हम लोग, कुछ समय के लिए हम इस शरीर को धारण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति थे अलाहाबाद में, जब प्रभुपाद जी अलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पे मेडिसिन का व्यवसाय करते थे, तो उस समय की एक घटना प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत अमीर व्यक्ति था वो। तो वो कुछ बीमार हो गया और जिस कारण से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, इलाज हो रहा था उसका। तो उसका उसकी स्थिति इतनी भयानक हो गई कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अभी आपका अंतिम समय आ गया है, अब हम आपको बचा नहीं सकते। तो वो व्यक्ति इतना घबरा गया और वो घबराहट के मारे, डर के मारे वो डॉक्टर से विनती करने लग गया कि आप कृपया किसी भी तरह से, किसी भी प्रयास से आप मुझे 4 साल और जीने का, जीने के योग्य बना दीजिए, मैं 4 साल कम से कम और जीना चाहता हूं ताकि मैं अपने कार्य कर सकूं। मेरे बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, अभी व्यापार बहुत फैला हुआ है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे कार्य मुझे करने हैं, बहुत सारे प्लान हैं मेरे, बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुझे पूरी करनी है। अभी मैं नहीं मर सकता, लेकिन उसमें डॉक्टर कुछ सहायता नहीं कर सकता। वास्तव में हमारा जीवन एक सीमित अवधि तक हमें प्रदान किया गया है और इसी में हमें कार्य करना है। तो इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य वो है जो इस जीवन का सदुपयोग कर सके। हमें जितने क्षण निर्धारित किए गए हैं जीवन के लिए, उससे ज्यादा हम किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे हम करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भी खर्च करने का प्रयास कर लें, हमें एक क्षण भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। तो जीवन जो है वो अनित्य है और बहुत क्षणिक है। एक सीमित अवधि के लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत गंभीरता से प्रयोग करना चाहिए हमें। तो ये एक रेंटेड हाउस जैसे है, एक किराए के मकान जैसे है ये शरीर। और भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, कारणम गुणसंगोस्य सद असत जन्म योनिषु। जिस प्रकार के हम कार्य करते हैं, जिस प्रकार की हम मनोभावना रखते हैं, उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो ये बहुत सरल है, इसके लिए एक सरल फॉर्मूला लागू होता है, पे एंड स्टे। पे एंड स्टे मतलब आप जितनी कीमत चुकाएंगे उसके अनुसार आपको वो मकान दे दिया जाएगा। तो जो पुण्य कर्म करते हैं उसके अनुसार उन्हें उच्च शरीर प्राप्त हो जाते हैं। हमें अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से हमने कुछ पुण्य किए हैं जिस कारण से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और वास्तव में ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि भारत भूमि में अगर हमें मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त हो रहा है तो ये कोई सामान्य पुण्यों का फल नहीं है, विशेष पुण्य हमने किए हैं जिस कारण से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसा कि यहां बताया है कि पुरंजन यानी जीवात्मा एक राजा है, तो राजा क्या करना चाहता है? अपनी स्वेच्छा से रहना चाहता है। राजा किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। तो हम लोग भी क्या समझ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम भी राजा बने, हम भी संसार के सब सुख भोग करें, तो हम भी राजा बनना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं, जितना ही हम स्वतंत्र रहने का प्रयास करेंगे उतना ही हम प्रकृति द्वारा हम कष्ट प्राप्त करेंगे। ये प्रकृति के नियम है। भगवान बता रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है वो दुखालय है और अनित्य है। तो वास्तव में हम राजा बन नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हमें वास्तव में क्या बनना है, हमें दास बनना है, हमें भगवान का सेवक बनना है, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। लेकिन हम दास बनना नहीं चाह रहे हैं, हम स्वामी बनना चाह रहे हैं। ये हमारी डिजीज्ड कंडीशन है, हमारी बीमारी की अवस्था है। तो इस बीमारी की अवस्था से हमें बाहर निकलना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम कभी कभी धर्म का आश्रय लेते हैं। धर्म का आश्रय किस लिए लेते हैं, पुण्य अर्जित करने के लिए। लेकिन वो पुण्य किस लिए हम अर्जित करना चाहते हैं, वो भी हम भौतिक सुख भोग के लिए अर्जित करना चाहते हैं। जैसे ये बताया गया शास्त्र में कि इस प्रकार के कुछ कुछ विशिष्ट यज्ञ हैं, कुछ दान कर्म हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करके हम स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकते हैं, उच्च लोक प्राप्त कर सकते हैं, जहां हम अनेक प्रकार के भौतिक सुख भोग सकते हैं। लेकिन ये प्राप्त करना भी सरल नहीं है। वास्तव में अगर कोई स्वर्ग सुख भी प्राप्त करना चाहता है तो इतना सरल नहीं है। शास्त्र में बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं, बहुत सारे विशिष्ट प्रकार के यज्ञ तपस्याएं बताई गई हैं जिन्हें करके कोई स्वर्ग लोक के सुख प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं पीछे के कुछ तात्पर्यों में कि जैसे अगर कान में बाली डालनी है किसी को, सोने के आभूषण पहनने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कान में छेद करना पड़ता है, यानी उस समय कष्ट प्राप्त करना पड़ता है। तो जो भावी सुख है, जो भविष्य में हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए वर्तमान में हमें कष्ट करना पड़ता है। तो ये कर्मकांड की विधि है। कर्मकांड यानी वर्तमान में हम कुछ तपस्या करेंगे, कुछ कष्ट करेंगे, कुछ त्याग करेंगे, दान करेंगे भविष्य का सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन वर्तमान में हमें कष्ट करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि आभूषण पहनने के लिए भी शरीर को कष्ट प्रदान करना पड़ता है। ये विधि है कर्मकांड की। लेकिन ये जो कर्मकांड से प्राप्त जो सुख है वो भी क्षणिक सुख है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि चाहे कोई उच्च लोकों तक पहुंच जाए, स्वर्ग लोक तक पहुंच जाए, लेकिन फिर उसे वापिस आना पड़ता है। कैसे? क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य जितना हम कमाई किए, जितना हम अर्जित किए, उतना हम कीमत चुका रहे हैं और उसके कारण हमें वो सुख भोग प्राप्त हो रहे हैं, या स्वर्ग लोक या इस संसार में भी भौतिक सुख हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कीमत खत्म हो जाएगी, वो बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर से हमें नीचे आना पड़ेगा, पुनर्मुषिका भव, फिर से हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति में आना पड़ेगा। तो ये जितने भी सुख प्राप्त करने के प्रयास हैं ये अस्थाई हैं। जितना हम प्रयास करेंगे कुछ समय तक हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन फिर दुख मिल जाएगा। इसीलिए ये जो महान भक्त हैं भगवान के, और भगवान स्वयं, भगवान नहीं चाहते कि हम इस प्रकार के अस्थाई सुख की परिस्थिति में रहें, हम अस्थाई सुख के पीछे भागें, ये भगवान नहीं चाहते हैं। तो हम पर दया करके भगवान और उनके शुद्ध भक्त हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि तत् साधु मन ने असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याम असद गृहात। ये असद गृहात, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, वो अपने पिता को संबोधित कर रहे हैं हिरण्यकशिपु को, कि असुरों में श्रेष्ठ हे हिरण्यकशिपु, तत् साधु मन ने देही नाम, जितने भी देही यानी देहधारी, तो यहां सेम शब्द प्रहलाद महाराज प्रयोग कर रहे हैं, देहधारी यानी जिन्होंने देह को धारण किया है, शरीर को धारण किया है, यानी ऑक्युपाई किया है, हमने कुछ समय के लिए इस शरीर को हमने धारण किया है, उन जीवात्माओं के लिए, देहधारियों के लिए सबसे अच्छा क्या है कि वो अपने वास्तविक कल्याण को समझें। लेकिन अभी वर्तमान क्या परिस्थिति है? सदा समुद्विग्न ध्याम असद गृहात। जो जीवात्मा है, जो अलग अलग प्रकार के शरीरों में जकड़ गई हैं, बंध गई हैं, उन्होंने क्या कर लिया? असत को ग्रहण कर लिया। असद यानी ये शरीर वास्तव में नित्य नहीं है, लेकिन हम इस शरीर को नित्य मान के इसके सुख के लिए सब प्रयास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम इस शरीर को किस प्रकार सबसे सुखी कर लें। ये असद है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। तो हमें वास्तव में अपने नित्य कल्याण के विषय में विचार करना चाहिए। सदा समुद्विग्न ध्याम, लेकिन जो अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं इस अनित्य शरीर को सुखी करने का, उस कारण से क्या हो रहा है? सदा समुद्विग्न ध्याम, हमारी बुद्धि हमेशा उद्विग्न है, हमेशा एंग्जाइटी में, हमेशा चिंता में है। कोई भी मनुष्य संसार में बिना चिंता के नहीं रह रहा है, सभी हमेशा चिंता में है, कुछ परेशानी में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने असत्य को सत्य मान लिया है, वो उन्होंने हमने इस इन अनित्य शरीर को नित्य मान लिया है। इस कारण से हम हमेशा इस शरीर और इंद्रियों और मन के संघर्ष में फंस गए हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि सभी जीवात्माएं इस संसार में देहात्म बुद्धि में बंध गई हैं और मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रही हैं। जैसे यहाँ पे ये विषय में चर्चा हो रही है कि ये जो शरीर में अलग अलग प्रकार के द्वार हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं इस शरीर में, वो क्या है? वो अलग अलग प्रकार के विषयों को भोग करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। सभी जीव इस शरीर का प्रयोग विषय भोगों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ये जो विषय भोग है ये हमें सुख प्रदान नहीं कर सकते। वास्तव में हमें इस ज्ञान को जानने के लिए हमें धीर होना पड़ेगा, धैर्य से सुनना पड़ेगा कि भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हमें क्या समझा रहे हैं। तो जैसे जितना ही हम सुनेंगे गंभीरता से और उस पर विचार करेंगे, तभी हम ये जो मन और इंद्रियों का संघर्ष है इससे बच सकते हैं, अन्यथा इस मन और इंद्रियों के संघर्ष से बचना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वो मन और इंद्रियों के प्रभाव से नहीं बच सके, तो हम कलयुग के जीव हैं, हम कैसे बच सकते हैं, इतना सरल नहीं है। लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम विनम्र भाव से भगवान की जो कथा है, भगवान के शुद्ध भक्तों का जो उपदेश है, उसे हम सुनने का प्रयास करें, उसकी चर्चा करने का प्रयास करें, जैसा अभी हम कर रहे हैं। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से हम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा आकर्षित कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे तो उनके आशीर्वाद से हमें वो बल प्राप्त होगा, जिस कारण से हम ये इंद्रियों के संघर्ष से, ये जो विषयों की तरफ जो इंद्रियों का आकर्षण है, इससे बच सकते हैं। अन्यथा चाहे हम जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लें, हम नहीं बच पाएंगे, अपने प्रयास से हम नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम इंद्रियों के और विषयों के संघर्ष से ही जूझते आ रहे हैं। तो ये इतना सरल नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। तो हमारे पास ये आशा है, तो इस आशा पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि ये पुरंजन राजा है, तो हम सभी अपने आप को राजा समझने का प्रयास कर रहे हैं और हम स्वतंत्र रूप से सुख भोग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक शिक्षा पद्धति है, वो हमें उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी हमें रिस्पॉन्सिबल लाइफ के लिए प्रेरित कर रहा है। जो हमारे शास्त्र हैं हमें उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इररिस्पॉन्सिबल लाइफ नहीं जी सकते, हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हमें भारत भूमि में जन्म प्राप्त हुआ है, तो इसमें हमारा विशेष उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को समझना होगा हमें। वो उत्तरदायित्व शास्त्र में बता रहे हैं, भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, ये जो ग्रंथ हैं, ये भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं इसके माध्यम से, ताकि हम उत्तरदायी बने। जो हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका हम सही इस्तेमाल कर सकें, सही दिशा में इसे लेके जा सकें, ताकि हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, भगवत प्राप्ति कर सकें। तो ये लक्ष्य कहीं भी इतना स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया जितना हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया। वैदिक शास्त्रों में हमें डायरेक्ट भगवान तक पहुंचने का उपाय बता दिया गया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, और जो भगवान के महान भक्त हैं, महाजन हैं, वो हमें इसका रास्ता दिखा रहे हैं अपने जीवन से भी। तो जैसे 12 महाजन हैं, 12 विशेष महाजन बताए गए हैं शास्त्र में, जो धर्म के तत्व को जानते हैं। तो 12 महाजन कौन से हैं? स्वयंभू, नारद, शंभु, प्रहलाद बलि, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, भीष्मो, जनको, बलिर, वैयासिकी, वयम। तो स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, और शंभु भगवान शिव, नारद देव नारद जी, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, चार कुमार, कपिल भगवान कपिल देव, देवहूति माता के पुत्र भगवान कपिल, मनु जो मनु है, और प्रहलाद, भीष्म, जनक, प्रहलाद महाराज, भीष्म देव, जनक महाराज, और बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, और स्वयं यमराज। ये 12 महाजन हैं जो धर्म के तत्व को जानते हैं। तो हमें इन महाजनों से जानना है कि अपने जीवन को कैसे जीना है। हमारा अभी वर्तमान में हमारे जो आदर्श हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं। आधुनिक युग में हम लोग अपने आप को आगे प्रगति की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आदर्श किनको रख रहे हैं? हम अपने आदर्श किसी क्रिकेट स्टार को रख रहे हैं या किसी फिल्म स्टार को रख रहे हैं, तो वो हमें क्या शिक्षा देंगे, वो क्या सिखाएंगे? जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है, हमेशा हम नीचे जा रहे हैं। तो हमारे वास्तविक आदर्श जो है ये महाजन है, ये भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, ये हमारे आदर्श हैं। हमें इनसे शिक्षा प्राप्त करनी है कि किस प्रकार हम अपने जीवन को उत्तरदायी रूप से जिएं। तो ये हमें सौभाग्य है, ये सुअवसर भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त दे रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में ये भगवत भक्ति का, भगवत भावना का, कृष्ण भावना का प्रचार करके दुनिया के सभी जीवों को ये अवसर प्रदान किया है कि हम अपने इस मनुष्य जीवन के उत्तरदायित्व को समझ सकें और उस पर आचरण कर सकें। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमें प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव और जो भी वैष्णव परंपरा में महान आचार्य हुए हैं वो हमें ये मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं बहुत कृपा करके। तो हमें इस मार्ग पर चलना है। तो यहाँ पे जो 12 महाजनों का वर्णन है उनमें से हम देख सकते हैं कि कुछ महाजन गृहस्थ भी हैं। जनक महाराज, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, ये गृहस्थ थे और राजा थे, लेकिन वो राजा होने के कारण अपने वास्तविक उत्तरदायित्व को समझे। वो राजा थे, उस राजा की पदवी का उन्होंने प्रयोग सुख भोग भौतिक विषय भोगों के लिए नहीं किया, उन्होंने इस उपाधि का प्रयोग किया भगवान की सेवा के लिए और सबको भगवान के लिए उन्मुख करने के लिए किया। तो अगर कोई भी राजा है या कोई विशिष्ट पद पर है तो उनका भी ये कर्तव्य है कि वो सब जो जनता है उसे भगवान की दिशा में आगे बढ़ाए। इसलिए भगवद गीता में प्रभुपाद जी एक श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, जो श्लोक है यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तदेव तरह जना। तो प्रभुपाद जी श्लोक में बता रहे हैं कि जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं यानी जो प्रशासन व्यवस्था में हैं उच्च स्तर पर और माता पिता हैं और जो शिक्षक वर्ग हैं उन सबका विशेष दायित्व है इस समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि जितने भी जो जनता है वो वास्तव में अबोध हैं, उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना है। तो वो ज्ञान केवल जो अधिकारी जन है वो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें विशेष रूप से प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमें शास्त्र बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं। तो हमें उसे गंभीरता से समझना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो इससे अगर कोई किसी भी स्थिति में है, चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है या कोई गृहस्थ जीवन में है, किसी भी परिस्थिति में हम रह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। जो ब्रह्मचारी जीवन में हमारा उत्तरदायित्व है हम उसके अनुसार जिएं और सेवा करें, गुरु का अनुगत्य करें और वो करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि कोई गृहस्थ जीवन में है तो वो गृहस्थ जीवन में भी जो नियम है, भक्ति के नियम है, उनका पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में रहते हुए हमें आचार्य उपासना करनी है, हमें गुरु का अनुगत्य करना है, गुरु के मार्गदर्शन में हमें चलना है, ताकि हम वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति उसे हम प्राप्त कर सकें। तो ये भक्ति मार्ग बहुत सरल बताया गया है। तो भक्ति की परिभाषा ही क्या बताई गई है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो इन इंद्रियों से, जब हम इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे यही भक्ति है। तो जब हम इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे दो फल प्राप्त होंगे, हमें दो लाभ प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला फल है क्या बताया यहाँ पे, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम। जब तक हम अपने आप को उपाधियों से संबोधित करेंगे तब तक हम वास्तविक ज्ञान, वास्तविक भक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। अगर हम सोचें कि हम किसी भी उपाधि का अभिमान करेंगे तो वास्तव में हम भक्त नहीं बन सकते हैं। अगर हमें ये अभिमान हो कि अरे मैं बड़ा त्याग कर दिया हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये त्याग का अभिमान हो तो हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हम उस अभिमान में रह सकते हैं लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। या कोई बड़ा कोई पदाधिकारी है, वो सोचे मैं इतना बड़ा विशिष्ट पद अधिकारी हूँ, जब तक ये उपाधि की भावना हमारे मन में रहेगी तब तक हम विनम्र नहीं हो सकते। लेकिन भगवान को विनम्रता पसंद है, भगवान को अहंकार अभिमान पसंद नहीं है। तो सबसे पहले हम जब भगवान की सेवा कर रहे हैं उसका फल ये होना चाहिए कि हमें उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, हमें किसी प्रकार के अभिमान में नहीं रहना चाहिए। और तत्परत्वेन निर्मलम, जब हम इस भावना से भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं, तो उससे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन बता रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हे भगवान आप परम पवित्र हैं। तो भगवान परम पवित्र है, तो परम पवित्र भगवान की सेवा करने के लिए हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। तो पवित्र होने का मार्ग क्या है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रियां, इन्हें हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये ही एकमात्र उपाय है जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो हमें इस प्रक्रिया में अपने आप को नियोजित करना होगा, हमें व्यवहारिक रूप से कार्य करना पड़ेगा, खाली सुनने से नहीं, प्रैक्टिकल उसे करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो वास्तव में इस मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति मार्ग में सेवा के माध्यम से, वही वास्तव में अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें प्रभुपाद जी अवसर दे रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके। तो प्रभुपाद जी ने हमें कितना सुंदर परिवेश दिया है, ये मंदिर के रूप में और अलग अलग प्रकार की प्रचार सेवाओं के रूप में, ताकि हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नियोजित कर सकें, और इस कारण से हमारी इंद्रियां और मन शुद्ध हो जाएंगे और हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो इंद्रिय विषय हैं, इंद्रिय विषयों का आकर्षण ये बहुत प्रबल है और हम इसमें इससे प्रभावित हो रहे हैं हमेशा। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय यही है कि अगर हम कुछ उच्च रस प्राप्त करेंगे तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, कि जब कुछ उच्च रस प्राप्त होगा तभी हम ये जो निम्न प्रकार का जो रस है, सुख है, इसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। क्योंकि ये जो पांच प्रकार के जो विषय हैं इस संसार में, शब्द, रस, स्पर्श, गंध और रूप, तो ये पांच विषयों को जब हम इन इंद्रियों के माध्यम से भोग करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम इसके आकर्षण में पूरी तरह से जकड़ जाते हैं। तो इससे बाहर निकलना इतना सरल कार्य नहीं, लेकिन जब हम उच्च प्रकार का रस प्राप्त करेंगे तभी हम इससे बच सकते हैं। तो वो उच्च रस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे बताया श्रीमद् भागवतम में, क्या भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र स्यात्, यही एकमात्र विधि है। इन विषय आकर्षणों से वैराग्य का उपाय है भक्ति। यानी भक्ति किस भक्ति से क्या होगा? परेशानुभव, हमें उच्च स्तर का आनंद अनुभव होगा, उस आनंद के अनुभूति से ही हम ये जो निम्न जो सुख है इसके आकर्षण के से हम मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करना होगा? उसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर कुछ भी हमें संसार में चाहिए तो उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो भक्ति का जो उच्च स्वाद है, आस्वादन करना है हमें, तो उसके लिए भी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लेकिन वो बहुत सरल कर दिया गया है हमारे लिए कलयुग में। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्रवण और कीर्तन की विधि प्रदान कर दी है। केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने मात्र से ही हम ये उच्च रस प्राप्त कर सकते हैं और निम्न जो ये जो विषय सुख का आकर्षण है इससे हम बच सकते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं ये प्रकट होते हैं संसार में और भगवान अलग अलग प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। किस लिए करते हैं? हमें वो रस प्रदान करने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए। तो ये विशेष धाम है भगवान का, वृंदावन धाम। यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने कितनी दिव्य सुंदर लीलाएं की हैं, जिनसे भगवान हमें आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की उन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना है, ताकि हमारा जो मन है वो भगवान के सुंदर स्वरूप में, भगवान के नाम रूप गुण लीला में लग सके। तो यहाँ जे वृंदावन धाम में ही भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं की हैं। भगवान की बाल्य लीलाएं कितनी मधुर और आकर्षक हैं, और उन्हें जानने के लिए हमें श्रवण करना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए और उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रोज भागवत कथा सुनते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में हमें जो हम सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं उस पर विचार भी करना चाहिए। क्योंकि साधारण रूप से ऐसा होता है, हम सुनते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हम फिर उसे भूल जाते हैं और उस पर विचार नहीं करते हैं, और हमारा मन जो है वो अलग अलग दिशा में जाता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं उस पर हम विचार करें। ये विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कभी कभी हमें थोड़ा समय के लिए एकांत में विचार करना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो विचार करने से हम वो जो विषय वस्तु है उसे आत्मसात कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान बहुत सारी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं हमें आकर्षित करने के लिए, तो उसमें से बहुत आकर्षक लीला है भगवान की दामोदर लीला। तो इसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि कुंती महारानी जब भगवान की वंदना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, तो कुंती महारानी भगवान के बारे में बता रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, आप परमेश्वर हैं, और भगवान का अलग अलग प्रकार से गुणगान कर रही है कि आप अपनी माया द्वारा स्वयं को आच्छादित कर लेते हैं, और बहुत सारे श्लोकों में भगवान की विशेषताओं का वर्णन कर रही हैं। और वो विशेषताओं का वर्णन करते करते कुंती महारानी भगवान की इस बाल लीला का वर्णन करने लग जाती हैं। तो कुंती महारानी बोल रही हैं कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् या ते दशा अश्रुकलिलंजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद्विभेति। तो कुंती महारानी बता रहे हैं कि जब यशोदा माता ने आपको बांधने के लिए रस्सी का प्रयोग किया, क्यों किया रस्सी का प्रयोग, क्योंकि भगवान ने शरारत की थी। भगवान ने क्या शरारत की थी, भगवान ने स्वयं अपने घर में मटकी फोड़ी थी। अभी तक तो भगवान बाहर में जाके दूसरों की मटकी फोड़ती थी और वो लोग आके माता यशोदा को शिकायत करती थी, लेकिन माता यशोदा उनकी बात पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आज जब स्वयं माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण ये शरारत कर रहा है, तो उन्होंने उसे सजा देने की इच्छा की। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं इसको कुछ दंड दूंगी ताकि ये आगे से ये शरारत ना करे। तो उन्होंने क्या किया, एक रस्सी का प्रयोग किया कृष्ण को उखल से बांधने के लिए। तो जैसे ही माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो वो रस्सी दो उंगली छोटी पड़ जाती थी। फिर माता यशोदा और रस्सी बांधी, लेकिन फिर भी वो दो उंगली छोटी पड़ रही थी। ऐसे बहुत बार वो रस्सी छोटी पड़ रही थी, दो उंगली। तो इस दो उंगली कम पड़ने का अभिप्राय हमारे आचार्य बता रहे हैं कि एक है प्रयास और दूसरा है कृपा। तो जो हम उच्च रस, भक्ति का रस, भक्ति का आनंद प्राप्त करने की अभी बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, अपना प्रयास दिखाना होगा भगवान को। तो ये प्रयास इस साधना के रूप में है जो हम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठने का कष्ट कर रहे हैं, और जो ये श्रवण कीर्तन है, वास्तव में हमारा भी इसमें मन नहीं लग रहा, रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, लेकिन हम इसे कर रहे हैं किस तरह से, एक दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में। तो ऐसा करने से धीरे धीरे हम अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी एक लेटर में लिख रहे हैं सत्स्वरूप महाराज को। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप ये जो हरिनाम संकीर्तन है इसका प्रचार कर रहे हैं सब जगह, आप अलग अलग देशों में, विदेशों में, पार्कों में जाके, अलग अलग स्थानों में जाके नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन सबको सुना रहे हैं, और दिव्य जो ग्रंथ हैं भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उनका वितरण कर रहे हैं और सबको प्रसाद दे रहे हैं। तो ये हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ये हमारी एक पैकेज है प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं। क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बीमार है उसे क्या चाहिए, उसे मेडिसिन चाहिए, औषधि चाहिए, और साथ में प्रॉपर डाइट चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए। तो हम सभी वास्तव में अभी बीमार हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, हम देहात्म बुद्धि में हैं, ये हमारी बीमारी है, ये रोग है, ये रोग की अवस्था है। तो उसके लिए दवाई क्या है, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, जिसे बांटा जा रहा है प्रचार के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से और ग्रंथ वितरण के माध्यम से। और बीमार व्यक्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण उपाय क्या है, डाइट, आहार। आहार बहुत रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, डॉक्टर जो बोल रहे हैं वही आहार करना पड़ेगा। तो वो आहार, वो क्या है, डाइट क्या है, प्रसाद, भगवान का प्रसाद। तो सबको भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन बांटना, ये औषधि है, और डाइट क्या है, भगवान का प्रसाद। तो प्रभुपाद जी बताएं कि हमारा जो ये हरे कृष्ण अभियान है, इसका जो मुख्य आधार है वो है भगवान का नाम संकीर्तन करना बाहर जाकर, और भगवान के दिव्य वाणी, दिव्य ग्रंथों का वितरण करना, और सबको भगवान का प्रसाद बांटना। तो अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो हम जितनी भी ये बीमारी की अवस्था है इस संसार के सभी जीवों की, उससे सबको मुक्त कर सकते हैं। तो ये उपाय है जो हमें दिया जा रहा है, तो हमें बहुत उत्साह से इस उपाय को करना है, लेकिन उसे बहुत गंभीरता से करना होगा। प्रसाद मतलब कुछ और नहीं ले सकते, अगर हम केवल इतने में संतुष्ट रहते हैं कि केवल जो भगवान का प्रसाद है, जो भगवान को अर्पित करके भक्तों द्वारा बनाया गया खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है, प्रसाद भगवान की कृपा, हम केवल वो ही खाएं, हम बाहर का कुछ ना खाएं, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रसाद भी खा रहे हैं और बाहर का भक्तों द्वारा बनाया हुआ कुछ भोजन भी खा रहे हैं तो हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे हमारी जो बीमारी है उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा और बीमारी बढ़ती जाएगी। तो इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, जो उपाय जो विधि हमें बताई गई है आचार्यों द्वारा उसे हमें पालन करना चाहिए। ये करने से हम ये जो बीमारी की अवस्था है, जो देहात्म बुद्धि है, इससे हम धीरे 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 मुक्त हो सकते हैं भगवान की कृपा से। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो भगवान के महान भक्त हमें सिखा रहे हैं, कुंती महारानी और जितने भी महाजन हुए हैं, अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान की शरण ग्रहण करें। इस प्रार्थना के माध्यम से और अपनी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित करके हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।